जिंदगी की कश्ती बाबा लिए चले हो, मेरी जिंदगी की कश्ती बाबा लिए चले हो। रफ्तार रफ्तार इसको रफ्तार में लिए हो, मेरी जिंदगी की कश्ती बाबा लिए चले हो। सकेंगे अब हमको ये अंधेरे हरगिज न छल सकेंगे, ये रोशनी फलक से हम पे जब किए हो, मेरी जिंदगी की कश्ती बाबा लिए चले।
जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। बाप को जिम्मेवारी देकर वापिस नहीं लो, मैं चल सकूंगा, मैं कहां से आया, मैं पन मिटाना अर्थात बाप का बनना। यदि गलती करते हो और इसी गलती में स्वयं उलझते परेशान होते, मैं करता हूँ या मैं कर नहीं सकता हूँ, इस देहाभिमान के मैंपन का अभाव, इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई व हो गया तो जिम्मेदार कौन, अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो, जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे, जो बाप कहे वह करेंगे जिस स्थिति में स्थान पर बाप बिठाए वहां बैठेंगे। श्रीमत में मैपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। तो व्यक्तवाणी है थर्ड में 77 की। पश्चाताप की इस श्रृंखला में आज बाबा कह रहे हैं चार बातों का यहाँ वर्णन है। सबसे पहले याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दो तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। सत्य की खोज और सत्य से प्यार क्यों खोजना चाहता है मनुष्य सत्य को, ये एक प्रश्न है। संसार में सुख सुविधाएं हैं, मनोरंजन है, सिनेमा है, सब कुछ है, फिर सत्य की खोज की क्या आवश्यकता? क्यों प्यास है मनुष्य के हृदय में सत्य को पाने की? जैसे शराब है, जो व्यक्ति शराब पीता है वो अपने दुख को भूल जाता है, उसी तरह सिनेमा है, दुख को भुला देता है कुछ समय के लिए। नशे की चीजें दुख को भुला देती है कुछ समय के लिए। संसार के मनोरंजन है, संबंध है, विकार है, दुखों को थोड़े देर के लिए भुला सकते हैं परंतु दुखों से मुक्ति नहीं दिला सकते। बस यही एक अंतर है। संसार के सुख, संसार के साधन, संसार के विकार, संसार के मनोरंजन दुखों की विस्मृति कराते हैं, दुखों से मुक्ति नहीं देते। घूमना फिरना, भोजन रस जिसमें व्यक्ति डूबा रहता है, संसार के संबंध कुछ समय के लिए भुला जरूर देते हैं परंतु मुक्त नहीं कर पाते, क्योंकि मुक्ति सत्य को पाकर ही होगी। और आत्मा तब तक अतृप्त ही रहती है जब तक वो सत्य को ना पाले, और सबसे बड़ा सत्य है उसका अपना स्वरूप, उसका अपना वास्तविक स्वरूप। बाहर की सारी दौड़ उसे अतृप्त ही रखती है जब तक वो भीतर नहीं खोजता उसको। तो बाबा कह रहे हैं कि जो सत्य की नाव पर सवार है वो डूबेंगे नहीं, और जो बाहर की नाव है और जो असत्य की नाव है वो कागज की नाव है, ज्यादा देर तक, ज्यादा दूर तक नहीं चलेगी। झूठ की जो नाव है वो कागज की नाव है, असत्य की जो नाव है वो कागज की नाव है, ज्यादा दूर और ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। और झूठ संसार का सबसे बड़ा झूठ है, मैं देह हूं। देहभान की जितनी वृत्तियां प्रवृत्तियां है, देहभान वश मनुष्य जो कुछ करता है सब झूठ है जो उसको डुबोता है। आज की मुरली में बाबा ने कहा ब्लाइंड फेथ, जो कुछ करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं और फिर डुबो देते हैं। आगा खा को याद किया, सोने में तोलते, वो भी झूठ, वो भी ब्लाइंड फेथ। सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट की कहानी है भारत की। तो झूठ डुबोने वाला है, असत्य डुबोने वाला है। तेरे बाबा कह रहे सत्य भी कि नाव पर सवार हो जाओ, और सबसे बड़ा सत्य है अपना स्वरूप। स्वस्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश और स्वपिता, ये चार चीजें हैं। इन चार चीजों का चिंतन करना अर्थात स्वचिंतन करना, स्व के स्वरूप का, स्व के धर्म का, स्व के देश का जहां से मैं आई हूं, और स्व के पिता का। हमारी सारी दिनचर्या इन चार चीजों में बीते, स्व के रूप को देखना, धर्म को याद करना, देश को याद करना, पिता को याद करना, यही सत्य है। और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है और जो विस्तार मैंने कर रखा है अपने जीवन में, भले नाम उसको सेवा का ही दिया क्यों ना, पर वो भी असत्य ही है। ऐसी सेवा कि जिसमें बाप की याद ही ना हो, ऐसी सेवा कि जिसमें खुशी ही गुम हो रही हो, ऐसी सेवा जिसमें टकराव हो, संघर्ष हो, ऐसी सेवा जिसमें व्यर्थ हो, और ऐसी सेवा जिसमें निगेटिव हो, ऐसी सेवा जहां मैं बढ़ चढ़कर बोल रहा है, वो सेवा है ही नहीं। भ्रम मात्र है सेवा का और झूठ है, मिथ्या है, असत्य है। इसके लिए सत्य की नाव पर सवार होना है। स्वस्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म और स्वपिता की याद, ये चार चीजें हैं। सबसे पहली बात जो बाबा ने यहां कही है वो है सत्य के विषय में, याद रखो। याद रखो, कहने के अलग अलग भाव हो सकते हैं। प्यार से भी हो सकता है तो स्ट्रिक्ट भी हो सकता है। याद रखना, क्या याद रखना? सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दो। जीवन नाव है, उसको दे दो तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। सत्य में बहुत शक्ति है, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, सत्य स्वयं सिद्ध है। सत्य में इतनी शक्ति है कि वो स्वयं को सिद्ध कर दे। इसके लिए सत्य की नाव पर जो है वो निश्चिंत है, उन्हें कोई डर नहीं है। और जो असत्य के नाव में है और जो झूठ की नाव में है उसे डर है। असत्य अर्थात मुख से झूठ बोलना इतना नहीं है, जो देहभान में रहते हैं, देह के अभिमान में रहते हैं, वो भी असत्य में है। जो स्वयं के स्वरूप को याद नहीं करते वो भी देहभान में। आज की मुरली में बाबा ने त्रिकालदर्शी की बात कही थी। क्या कहा था वरदान में? हर बात में कल्याण है और अचल अडोल महावीर और त्रिकालदर्शी के बारे में क्या कहा? एक अव्यक्त वाणी है, 18th September 1969, जिसमें बाबा ने कहा है त्रिकालदर्शी बनने के लिए तीन चीजें करो, तीन चीजों याद रखो, स्व, संयम, पहला स्व, संयम और समय। इन तीन चीजों को जब याद रखोगे तब त्रिकालदर्शी बनोगे। पूरी की पूरी मुरली त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोड़ की नाथ पर है। स्व को याद करो तो त्रिकालदर्शी बनेंगे, समय को याद करो तो त्रिकालदर्शी बनेंगे, और संयम धारण करो तो त्रिकालदर्शी बनेंगे। यहां पर बाबा कह रहे सत्य की नाव, स्व स्वरूप में स्थित हो जाना अर्थात सत्य की नाव में स्थित हो जाना। सत्य बाप को याद करना अर्थात सत्य की नाव में स्थित हो जाना। तो सत्य की नाव डूब नहीं सकती, ये विश्वास रहेगा। मुश्किलें ज्यादा है पर सत्य की नाव को, तूफान बहुत है इसलिए हिलती डुलती ज्यादा है, क्योंकि सत्य का विरोध करने वाले बहुत है, और असत्य की जो नाव है वो हिलती डुलती नहीं, क्या होती है, सीधा ही डूबती है। सीधा ऊपर से दिखता है कितना अच्छा चल रहा है, पर अंदर से खोखला है, अंदर से ढोंग और आडंबर है। और जहां अध्यात्म में ढोंग और आडंबर होगा वो जीवन डूबेगा, जहां दिखावा होगा व्यर्थ होगा शो ऑफ होगा वो जीवन डूबेगा, क्योंकि वो असत्य की नाव है। और वो एक दिन ऐसा डूबेगा कि पता ही नहीं चलेगा, असत्य का टाइटैनिक डूबना ही है। लेकिन डूब नहीं सकते, तो बाप को जिम्मेवारी देकर क्या करो, बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं ले लो। सबसे पहली बात है सत्य की, चार बातों की हम चर्चा करेंगे। पहला बताया सत्य, दूसरा है जिम्मेवारी, बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं ले लो। और एक जगह आगे कहा है जिम्मेदारी की परिभाषा, जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो, कौन सी, जैसे बाप चलाए वैसे चलेंगे, दूसरा जो बाप कहे वो करेंगे, जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहां बैठेंगे, केवल यही जिम्मेवारी है, जहां बिठाए वहां बैठेंगे, जैसे चलाए वैसे चलेंगे, और जो वो कहे वो करेंगे। इसे कहा जाता है जिम्मेवारी। तो कहा है जिम्मेवारी बाप को देखकर वापस नहीं लो, इसमें समर्पण छिपा हुआ है। इसी के साथ तीसरी बात जो यहां कही है बाबा ने वो है मैं चल सकूंगा, मैं कहां से आया, मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना। यह गलती करते हो और इसी गलती से स्वयं उलझते परेशान होते हो, मैं करता हूं या मैं कर नहीं सकता हूं, इस देहभान के मैंपन का अभाव हो, इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई या हो गया तो जिम्मेवार कौन, अपनी जिम्मेवारी सिर्फ इतना समझो जैसे बाप चलाए वैसे चलेंगे, जैसे वो कहे वैसे करेंगे, और तीसरा जिस स्थिति के स्थान पर बिठाए वहां बैठेंगे। यहां समर्पण की बात कही है। संकल्प और समर्पण में क्या अंतर है, एक है मैं संकल्प करता हूं, तर्क की भाषा है, इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज है, दूसरी तरफ समर्पण है। समर्पण संकल्प नहीं करता, समर्पण स्वाहा होता है, उत्सर्ग की भाषा है। समर्पण स्त्रेन है फेमिनाइन, संकल्प पुरुष है मैस्कुलाइन। एक है समर्प संकल्प करना, एक है समर्पण कर देना। एक मेल है एक फीमेल है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? संकल्प या समर्पण? एक है समर्पण का साधना, दूसरी साधना है समर्पण की साधना। जो भक्त साधना करता है वो समर्पण की है, स्वाहा कर देता है, मेरा कुछ भी नहीं। और जो ज्ञानी साधना करता है वो संकल्प करता है, आज मैं ये करके रहूंगा, मैं आत्मा हूं, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जो भाषा है वो मैं की भाषा है, इसे कहते हैं संकल्प की साधना। दूसरी साधना जो है वो है समर्पण की। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? समर्पण में संकल्प, संकल्प के समर्पण, दोनों में से बताओ। एक भाषा है समर्पण की, एक भाषा है संकल्प की। अध्यात्म में सर्वोच्च अवस्था स्त्रेन है, स्त्री की है। पुरुष धीरे धीरे स्त्री बन जाता है। एक विदेश का साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट कार्ल गुस्टाव जुंग, सिगमंड फ्राइड का जो शिष्य था, उसने एक इतनी अद्भुत बात लिखी है, कही है। उसने कहा है हर व्यक्ति के अंदर स्त्री भी है और पुरुष भी है, स्त्री भी है और पुरुष भी है, दोनों है। अंतर एम्फसिस का है, अंतर कौन सा ज्यादा है उसका है। पुरुष में पुरुष रूप ज्यादा है, स्त्री रूप कम है। स्त्री में स्त्री रूप ज्यादा है, पुरुष का रूप कम है, पर है दोनों भी। आने वाले संडे की जो मुरली है कंबाइंड स्वरूप पर है, संडे की संगम के चार कंबाइंड स्वरूप है। पहला मैं और शरीर, आत्मा और शरीर, दूसरा आत्मा और परमात्मा, तीसरा ब्राह्मण और फरिश्ता, और चौथा लक्ष्मी और नारायण। तो उसने लिखा है कि हर व्यक्ति के अंदर स्त्री है और पुरुष है, और हर पुरुष को उस स्त्री की तलाश है जो उसके ही अंदर है, और हर स्त्री को हर उस पुरुष की तलाश है जो उसी के अंदर है। और इसलिए यह खोज कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि जो पुरुष जिस स्त्री को ढूंढ रहा है वो बाहर नहीं, वो अंदर है, और वो उसे बाहर ढूंढता है पर उसे कभी नहीं मिलती वो। और हर पुरुष स्त्री उस पुरुष को ढूंढ रही है जो कि उसी के अंदर है, इसलिए यह तलाश कभी पूरी नहीं होती है। यह तलाश पूरी होती है केवल योगी की, क्योंकि उसके अंदर के जो अंदर के स्त्री पुरुष हैं वो मिल जाते हैं, संकल्प और समर्पण मिलते हैं, वो योगी जीवन है। बाकी व्यक्ति खोजते ही रहता है, ढूंढते ही रहता है। हाँ, एक हाथ कभी मिल भी जाए, थोड़ा बहुत मेल हो जाए, पर जो अंदर की छवि और जो चित्र है वैसा ही मिलेगा जरूरी नहीं है, और मिल ही नहीं सकता। इसके लिए बाहर के मिलन अतृप्ति ही लाते हैं, मिलन आंतरिक है। स्त्रैण स्वभाव और पुरुष स्वभाव आंतरिक है। तो एक मार्ग है समर्पण का और दूसरा मार्ग है संकल्प का। हमारा कौन सा मार्ग है? बाबा ने दोनों चीजें सिखाई है, समझाई है। संकल्पवान भी बनना है तो समर्पण भी करना है, परंतु समर्पण इतनी सस्ती चीज नहीं है। उसका संबंध किसी वस्त्र, किसी बैच, किसी स्थान पर रहने से या किसी समारोह, ये चार चीजों से नहीं है। उसे नीचा सा बनाया जा सकता है, जैसे अभी भी भाई कह रहे थे, बड़े बड़े कंपनियों की चीजें छोटे छोटे लोग सस्ते दामों में बेचते और स्टैंप बड़ी कंपनी का लगाते और उससे फायदा बहुत होता है उनको, यह समर्पण नहीं है। समर्पण समग्र होना चाहिए। आठ प्रकार के समर्पण है ब्राह्मण जीवन में। पहला तन, शरीर उसकी सेवा में अर्पण कर दिया, इसलिए ये शरीर हमारे या किसी और के भोग के लिए नहीं है। अंगत शब्द का क्या अर्थ है? अंग अर्थात अंग, द अर्थात संस्कृत में द अर्थात देना, जिसने अपने अंग अंग दे दिए हैं वो अंगत, और वो जब अपना पैर रखता है तो रावण भी हिला नहीं सकता उसको। तो शरीर के अंग प्रत्यंग यज्ञ में और यज्ञ की सेवा में दे देना, अर्थात देह का समर्पण। मन का समर्पण, तन मन वो तो बहुत सूक्ष्म है, मन का समर्पण अर्थात संकल्पों का समर्पण। धन ये स्थूल है, सभी समर्पणों में सबसे लोएस्ट श्रेणी का। कई सारे लोग ढूंढते हैं हमें बहुत धन है देना है, कहां पर दे, पर देने के पीछे कामनाएं बहुत होती है कि यदि ये दिया जाए तो हमारे साथ हमें बहुत कुछ मिलना चाहिए इन रिटर्न। कुछ दिनों पहले एक माता आई थी हॉस्पिटल में, तो उसने हॉस्पिटल के नाम पर कुछ पैसे भेजे होंगे, कभी बहुत पहले 20-25 कुछ भेजे होंगे, 1000 रुपए। तो अभी आई तो उसका कुछ एक्सरे करना था, तो वो कहती है मैंने इतने पैसे दिए फिर भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे। इसको क्या कहेंगे? वो जो दिया था वो किस भाव से दिया था? कामना के भाव से। आज की मुरली में बाबा ने बिरला को याद किया है। बिरला ने शरीर छोड़ा, भगवान के द्वार पर पहुंचा, भगवान ने पूछा क्या किया, उसने कहा लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाए भारत भर में। भगवान ने कहा नाम किसका दिया? बिरला टेम्पल। तो हो गया ना, पूर्ण गया। मंदिर किसका है? लक्ष्मी नारायण का। और नाम किसका दिया? बिरला। जब जब जो जो पढ़ रहा है पुण्य कम हो रहे, मंदिर तो बहुत अच्छे बनाए पर नाम किसका दे दिया? समर्पण धन का दे दिया, फिर ये चिंता नहीं कि वो उसका कैसे प्रयोग करेगा, नहीं तो ध्यान लगाए रखिए कि ये इसका क्या करता है। अब यदि किसी को हमने दिए यज्ञ के नाम से और उसको मार्केट में देखा ये तो शूज खरीद रहा है अपने लिए, तो आग लगेगी। तो ये समर्पण हुआ क्या? ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगेगा। दे देना, रिटर्न की कोई कामना नहीं। फिर उसका वो क्या करे इसका हमें कोई संकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं। ये समर्पण तन मन धन बुद्धि का समर्पण, ये तो मन के समर्पण से भी सूक्ष्म है, क्योंकि बुद्धि में अहंकार है। दादी को पूछा गया था, उस दिन भी कहा था, निराकारी निर्विकारी निरंकारी, जब निर्विकारी में अहंकार आ जाता है तो निरंकारी कहने की क्या जरूरत थी। दादी ने कहा था कि जो भी ब्राह्मण आत्मा बनती है उसको इतनी प्राप्तियां होती है बाबा से, उसकी स्किल्स, उसके हुनर, उसकी योग्यता है, विशेषता इतनी उभर कर निखर कर बाहर आ जाती है कि धीरे धीरे उस ब्राह्मण आत्मा को उन पर ही अहंकार हो जाता है। उस अहंकार का भी समर्पण अर्थात निरंकारी। इसके लिए निर्विकारी निराकारी निर्विकारी और निरंकारी। तो तीसरा समर्पण है बुद्धि का, बुद्धि की विशेषता, ये मैं करता हूं, ये मैं करती हूं, ये मैं जानता हूं, ये मुझ में अच्छा है, मेरा चिंतन अच्छा है, मेरे बोलना अच्छा है, मेरा भाषण अच्छा है, मेरी हैंडलिंग पावर अच्छी है, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, ये मुझे ज्यादा आता है, ये सारा जो है ये बुद्धि का अहंकार है। धन मन धन बुद्धि, उसके बाद में संस्कार, ये उससे भी सूक्ष्म है, क्योंकि बुद्धि तो फिर भी हमें पता है, संस्कार तो ऑटोमेटिक है क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर है। यू डिफीट द हैबिट बाय अ काउंटर हैबिट। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, यदि कोई हैबिट को हराना है तो काउंटर हैबिट निर्माण करो, उसके विरोधी आदत निर्माण करो। एक आदत को खत्म करने के लिए दूसरी आदत का निर्माण, विकार की आदत है निर्विकारिका की आदत डालो, भटकने की आदत है स्थिर होने की आदत डालो, डाइवर्शन, क्योंकि काम यदि केवल उस आदत पर किया जाए तो मन फिर भी वहीं घूमते रहेगा उसी चक्र में, उसको वहां से ही निकाल दो और नई काउंटर हैबिट तैयार करो कि जिस हैबिट में वो हैबिट का होना असंभव हो जाए। संस्कारों का समर्पण सबसे ज्यादा सूक्ष्म समर्पण है। फिर उसके बाद में है कर्म का समर्पण, जो भी कर्म किया वो स्वाहा। उसका अभिमान नहीं, उसका वर्णन नहीं, उसका अहंकार नहीं। और उससे भी एक सूक्ष्म है कर्म के परिणाम का समर्पण, क्योंकि कर्म किया, सफलता हुई उसका भी समर्पण, पर असफलता हुई उसका भी समर्पण, फेलियर आया उसका भी समर्पण, नहीं तो उसके संकल्प ही ना चले। हमको याद है मुंबई में बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम था 2007 या 2006 में शायद, मेगा प्रोग्राम था, पूरे महाराष्ट्र के सब लोग उस मैदान में आ रहे थे, बाहर वालों के लिए मेगा प्रोग्राम था, पर सुबह से लेकर शाम तक बारिश चालू थी, तेज बारिश, सब ब्राह्मण यहां वहां कमरे जो लिए हुए थे योग कर रहे थे कि शाम को प्रोग्राम है, पब्लिक प्रोग्राम है, बाहर वालों के लिए प्रोग्राम है, बारिश रुक जाना चाहिए, बहुत तपस्या कर रहे थे सुबह से कि कैसा भी हो संकल्प था रुक ही जाएगी बारिश, पर बारिश रुकना तो दूर और ही बढ़ गई। वो प्रोग्राम में छाता लेकर खड़ी ब्राह्मण खड़े थे सफेद ड्रेस में, प्रोग्राम था बाहर वालों के लिए, बाहर वाले कहां से आएंगे वो भी बारिश में, जो सारे दूर दूर से लोग आए थे वही थे, और यही हुआ, बस प्रोग्राम इसी में पूरा हुआ। इस परिणाम को भी स्वीकार करना, ये समर्पण। हाँ, अगर ये प्रोग्राम में बारिश रुक जाती ना तो इतने ढेर सारे अनुभव सुनाते ब्राह्मण बड़ा चढ़ाकर कि बाबा ने कैसे मदद कर दी, मुझे टचिंग तो पहले ही हो गई थी, बाबा ने तो सुबह ही बोल दिया था, सब अपने अपने महिमा के गीत गाते, अनुभव लिखते, ज्ञानामृत में आ जाता, सब जगह आ जाता कि कैसे सबने योग लगाया और कैसे बारिश रुक गई, पर बारिश तो रुकी ही नहीं, वो बारिश में ही सारा प्रोग्राम हुआ, और वो ऑडियंस कोई भी नहीं, केवल सब छाते लेकर श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मण। प्रोग्राम था बाहर वालों के लिए, खर्चा बहुत किया था, सब कुछ था, ऐसा हुआ। अब इसको भी स्वीकार करो, जब वो स्वीकार करते हो तो ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसको स्वीकार करना, इसको स्वाहा कर देना, अर्थात कर्म के फल का भी समर्पण। तो तन मन धन बुद्धि संस्कार कर्म और कर्म का फल, मुख्य ये साथ ही है। और बहुत सारे चिंतन किए जा सकते हैं, पर ये 7 प्रकार के समर्पण। फिर उसके साथ वाणी को भी जोड़ते हैं कई लोग, वाणी का भी समर्पण। तो यहां बाबा बात कर रहे हैं, सबसे पहले सत्य की बात की, फिर जिम्मेवारी बाप को दे दो। मैं करता हूं, ये मैं कहां से आया? मैंने किया, ये मैं कहां से आया? मैं को मिटाना अर्थात बाप का बनना। सारा पुरुषार्थ अध्यात्म का इस मैं को मिटाने का है। ये जो कैपिटल आय है वो थोड़ा स्मॉल आय बन जाए। स्मॉल आय अर्थात मैं और ऊपर बिंदी। भक्ति मार्ग में एक कहानी बताते हैं कि नारद मुनि गुजरते रहते हैं और देखते हैं एक साधु तपस्या कर रहे हैं, बहुत बूढ़ा है और ऐसा लग रहा था बहुत समय से तपस्या चालू है। तो वो नारद को पूछता है, आप कहाँ जा रहे हो? नारद कहता है, मैं भगवान के घर, आना जाना तो लगा रहता है। तो वो पूछता है, क्या मेरा एक सवाल पूछोगे? कहते हैं, पूछिए, मेरी मुक्ति कब होगी? तो नारद कहते हैं, ठीक है, पूछूंगा। पर ये जब वो कहता होता है, उसका मन जैसे शर्त से, शिकायत से भरा है, ये पूछते समय भी क्रोध से भरा हुआ है। तपस्या तो कर रहा है पर प्रश्न क्रोध से पूछ रहा है, शिकायत से पूछ रहा है और शर्त से पूछ रहा है। नारद कहता है, ठीक है। और उसी पेड़ के पास एक दूसरा पेड़ होता है जहां पर एक युवा सन्यासी है, वो भी तपस्या कर रहा है परंतु वो झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। तो नारद कहता है कि मैं भगवान के पास जा रहा हूं, ये जो बाजू वाला है इसका एक प्रश्न है, क्या तुम्हारा भी कोई प्रश्न है क्या? पर उसे तो प्रश्न सुनने की भी उसके पास टाइम नहीं है, वो इतना मगन है। नारद जाता है, वापस आता है। पहला साधु पूछता है, क्या हुआ, कोई उत्तर? तो नारद कहता है, हाँ, भगवान ने कहा है 3 जन्म और लगेंगे। तो इतना क्रोधित हो जाता है, संसार छोड़कर इतने वर्षों से यहां पर तपस्या कर रहा हूं और 3 जन्म, अपनी माला फेंक देता है और गुस्से में चला जाता है। दूसरे को नारद कहता है कि मैंने भगवान से पूछा, तुम्हारी तो स्थिति और भी कम गंभीर है, उसके तो 3 जन्म में मुक्ति होने वाली थी पर वो क्रोध में भरकर चला गया, तुम्हारा मुक्ति तो इस झाड़ में जितने पत्ते हैं इतने जन्म तुमको और लेने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर मोक्ष मिल सकता है। तो वो कहता है, क्या केवल इस झाड़ में जितने पत्ते, इस सारी सृष्टि में असंख्य झाड़ है और उसके अनगिनत पत्ते हैं और मेरी मुक्ति केवल इतने में? और वो झूमने लगता है, नाचने लगता है, कहता है, कितने मेरे पर प्रभु परमेश्वर दयालु है। और उसी क्षण वो अदृश्य हो जाता है, तत्काल मुक्ति। ये है समर्पण। उसमें 3 चीजें हैं, कोई शर्त नहीं, कोई शिकायत नहीं और तीसरा कोई अपेक्षा नहीं। जहां ये 3 चीजें आ जाएगी उसको कहते हैं समग्र समर्पण, इंटीग्रेटेड सरेंडर। कोई शर्त नहीं, ये कर दो तो वो, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है कि ये स्थान ठीक नहीं, ये लोग ठीक नहीं, ये वातावरण ठीक नहीं। कुछ दिन पहले था ना मुरली में, या तो हम बॉस है तो नीचे वालों को बदल देंगे, या हम कुछ नहीं करते तक तो हम बदल जाएंगे, किनारा कर लेंगे। तो समर्पण अर्थात कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं है किसी की भी, सब ठीक है, किसकी कंप्लेंट करें? जो हो रहा है हमारा हिसाब किताब है। कल का ही वरदान था ना, ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा चुकते होंगे, धर्मराज। आज भी कहा मुरली में, ट्रिब्यूनल शब्द आया है एक जगह, कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो कोई शिकायत नहीं, कोई शर्त नहीं, और तीसरा अपेक्षा, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं कि बड़े हमें प्यार दे, सत्कार दे, रिकॉग्नाइज करे, आगे बढ़ाए, या छोटे सम्मान दे, या साथी सहयोग दे। तीनों से ही कोई अपेक्षा है नहीं, और यहां तक कि बाहर वालों से भी कोई अधिक अपेक्षा है नहीं। योगी अपेक्षाओं से परे होता है, जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी। जितनी अपेक्षा है ज्यादा, उतने दुख, क्योंकि हमारी अपेक्षा इस संसार में कोई भी पूरा नहीं कर सकता। तो ये समग्र समर्पण के तीन घटक है। जगदीश भाई की एक क्लास में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। कईयों की आदत होती है दूसरों से काम कराने की। किसी को फाइल ही थमा देंगे, जरा पकड़ो 2 मिनट, किसी को कहेंगे चेयर जरा वहां रखो, किसी को कहेंगे मैं वहां जा रही हूं ये मेरे साथ में रखो, दूसरों को सौंपने की अपनी जिम्मेदारी। उन्होंने कहा इससे अच्छा तो एक नौकरी रख लो अपने काम करने के लिए। सर्वेंट, सर्वेंट अर्थात नौकर, पर इंग्लिश मुरलियों में बड़ा ही शिष्ट सा शब्द प्रयोग किया गया है, क्योंकि सर्वेंट कोई मानता नहीं अपने आप को नौकर। इसके लिए सेवाधारी के लिए क्या शब्द प्रयोग किया, सर्वर, नया शब्द खोज के निकाला है। इंग्लिश मुरलियों में वो आता है, सर्वेंट कहना थोड़ा सा अपमानजनक लगता है। सेवाधारी ठीक है, पर कोई कहे इस डिपार्टमेंट का सर्वेंट कौन है तो अपमान लगेगा उसको। ऊपर से तो मालिक, पर अंदर से ये भाव कूट के हो कि मैं नौकर ही हूं, तो वो जो मैं है, वो जो अकड़ है, वो गिरेगी नीचे। तो सेवाधारी, तो वो भी समर्पण नहीं है जिसमें अहंकार है, जो दूसरों से काम कराते हैं, ये वहां कर दो, ये वो कर दो, ये ऐसा कर दो, पैर दबा दो, थोड़े से सिर दबा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सामान ला दो, तो ये भी समर्पण नहीं है। तो क्या कहा बाबा ने, बाप का बनना अर्थात मैंपन मिटाना। आज की मुरली में इससे संबंधित और एक बात आई है, कौन सी, एक बात आई है, काशी कलवट, उनका है काशी कलवट और तुम्हारा है अविनाशी कलवट उनका काशी कलवट और तुम्हारा अविनाशी कलवट। कलवट अर्थात सैक्रिफाइस, काशी में किया हुआ सैक्रिफाइस अर्थात काशी कलवट, और तुम्हारा है आबू में किया हुआ कलवट, वह काशी कलवट, ये आबू कलवट, वो काशी कलवट, ये अविनाशी कलवट, वो विनाशी कलवट, ये अविनाशी कलवट। तो अविनाशी कलवट अर्थात बाप का बनना अर्थात मरजीवा अर्थात जीते जी मरना, वो तो मरते हैं जीवघात, अल्पकाल का सुख मिल जाता है, मैं तुम्हें अल्पकाल का सुख भी मैं ही देता हूं तो सदाकाल का सुख भी मैं ही देता हूं। आज की मुरली में दोनों काम मैं ही करता हूं, तो दोनों ही चीज मैं देता हूं। तो ये भी एक समर्पण की, हमारे समर्पण की निशानी है भक्ति मार्ग में। तो चार बातें यहां हमने देखी, सबसे पहले तो सत्य, सत्य में स्वस्वरूप, स्वधर्म, स्वपिता और स्वदेश, इसमें स्थित रहना अर्थात सत्य। दूसरा जिम्मेवारी, अपनी सारी जिम्मेवारी बाप को दे देना, ये सब तुम्हारा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पूर्ण भाव से, मनोयोग से वो न करें, सब कुछ करे पर साथ साथ समर्पण साथ साथ हो कि यह तुम्हारा है। सिंपल सा फॉर्मूला बाबा ने जो इस यज्ञ में दिया है वो है कि तुम ये कहो कि तुम्हारा मेरा सब कुछ तुम्हारा है तो बाप का जो है वो तुम्हारा हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला है इस यज्ञ का, मेरा सब कुछ तेरा तो उसका सब कुछ मेरा, ये फॉर्मूला है। तो जिम्मेदारी बाप को देकर वापस नहीं लेना, ये दूसरी बात। तीसरी बात कही समर्पण की, सब कुछ दे दो। और चौथी बात है श्रीमत में मनमत मिक्स ना करो। क्या कहा? श्रीमत में मैपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे तो पश्चाताप से परे रहेंगे, तो प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। श्रीमत को प्योर अनडाइल्यूटेड नीट सॉल्यूशन, श्रीमत को वैसे देखना जैसे वो है, उसमें मिक्सचर करना, उसमें मनमत मिक्स करना, उसमें अपने अनुसार उसको मॉडिफाई करना, सुविधाजनक बनाना। बाबा ने कहा जब ऐसा नहीं करेंगे तब पश्चाताप से परे रहेंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ पश्चाताप होते रहेगा। तो ये चार बातें हैं धारण करने की। आज क्या है 26, तो बाबा 28 को आएंगे। तो जो भी मुरली चलेगी, जैसे पिछली बार जो मुरली चली थी उसमें बाबा ने 3 समान दिए थे, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ संगम योगी ब्राह्मण डबल फरिश्ता, और मैं आत्मा मनसा शक्ति से विश्व को शक्ति देने वाली, ऐसे कुछ समान उसमें से उठाकर अमृत वेला और नुमा श्याम और बीच बीच में दिन भर में अभ्यास, उसी तरह ये जो मुरली चलेगी उसमें से भी अपने आप को पहले ही तैयार करना है कि कुछ कुछ समान निकालेंगे और उस पर काम करेंगे। जैसे एक स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है, चेकिंग करता है किस सब्जेक्ट में मैं वीक हूं। मैथ्स मेरा वीक है, मेरा हिस्ट्री वीक है, कि मेरा ज्योग्राफी वीक है, कि मेरा लैंग्वेज में ज्यादा कमांड ठीक नहीं है। वो करता है ना चेकिंग अपनी, वो देखता है मैं किस में वीक हूं, टाइम मुझे किस में देना है, मैथमेटिक्स में ज्यादा टाइम देना है, फिजिक्स में ज्यादा टाइम देना है, बायोलॉजी में ज्यादा टाइम देना है, इंग्लिश में ज्यादा देना है, हिंदी में ज्यादा देना है, किस में टाइम दो ज्यादा, मेरा वीक सब्जेक्ट कौन सा है, या सारे ही वीक है। योग में ज्यादा टाइम, योग में काम करना है ज्यादा है। चार प्रकार की भट्टी है ब्राह्मण जीवन में, ज्ञान भट्टी, योग भट्टी, दिव्य गुणों की भट्टी और सेवा की भट्टी। चारों भट्टियां चालू है साथ साथ, कि एक छोड़ देता हूं और एक करता हूं। दिव्य गुणों की भी भट्टी है, एक दिव्य गुण लेना और एक हफ्ता तक उसी भट्टी को करना, कोई भी एक दिव्य गुण, अनुशासन, कि मैं अनुशासन को कहां कहां लाऊं, यह है दिव्य गुणों की भट्टी। सेवा की भट्टी तो दिन रात चालू है, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, न कहते हुए भी चालू है। सेवा की भट्टी के लिए किसी संकल्प की आवश्यकता नहीं है, हाँ ज्ञान की भट्टी के लिए संकल्प की आवश्यकता है, योग की भट्टी के लिए संकल्प की आवश्यकता है, और दिव्य गुणों की भट्टी के लिए संकल्प की आवश्यकता है। परंतु सेवा की भट्टी तो वैसे ही चालू है, वो सबकी चालू है और सभी उसमें व्यस्त है, हर एक दूसरे से आगे है, ये सेवा के लिए कहा जा सकता है, पर ज्ञान बहुत कम। योग की भी भट्टी बहुत चालू है, पहले नंबर पर है सेवा कि जो सब कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर योग, तीसरे नंबर पर ज्ञान, चौथा सबसे लास्ट दिव्य गुणों की भी भट्टी है क्या, ये शायद पता भी नहीं किसी को कि वो भी एक भट्टी है। तो ज्ञान की भी भट्टी करनी है, ज्ञान की भट्टी अर्थात चर्चा, ज्ञान की भट्टी अर्थात चिंतन, ज्ञान की भट्टी अर्थात मनन, ज्ञान की भट्टी अर्थात सोचना, विस्तार करना, लिखना, क्लास सुनना, लेन देन करना। आज कहा ना बाबा ने, तुम्हारे पास क्या है, अविनाशी ज्ञान रत्न है, इसके लिए देना पड़ेगा। बाप को कौन से बच्चे प्रिय है, कल की मुरली जो 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 जा ज्ञान शंख ध्वनि करते हैं वो बच्चे बाप को प्रिय है, जो ज्ञान की शंख ध्वनि करते हैं। और शंख ध्वनि करने के लिए चिंतन चाहिए, इसके लिए ज्ञान की भी भट्टी करनी है, योग की भी भट्टी करनी है, दिव्य गुणों की भी भट्टी करनी है, और सेवा की चालू है वो चलने दो वो करनी नहीं है, वो चालू है ऑलरेडी, ऊपर की तीन थोड़ी कम चालू है। तो सत्य, जिम्मेवारी, समर्पण और चौथा मनमत श्रीमत में मिक्स न करना, परमत श्रीमत में मिक्स न करना। किस्मत अर्थात किसकी मत पर है, यदि श्रीमत पर है तो किस्मत चरणों में है, मुट्ठी में है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को वश में किया है। गीते तो जो मुरली चलेगी 28 को, उस पर मन को तैयार करना है कि उस पर मुझे काम करना है, कुछ तो एक खजाना मिलने वाला है, ऐसे संकल्प चाहिए, तैयारी, मेंटल प्रिपरेशन, ताकि एक पार्श्वभूमि बैकग्राउंड तैयार हो कि वो जब आएगी तब उसको हम पूर्ण रूप से ग्रहण कर ले, धारण कर ले। अच्छा, ओम शांति।